हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉई एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी TTL, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थकेयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाताय देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में, जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। इस भगवद गीता सार कार्यक्रम के अंदर हम भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उसका अध्ययन और श्रवण करेंगे। आज का पहला एपिसोड है, तो इस एपिसोड में भगवद गीता का जो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग उसका वर्णन करेंगे। पर उस पर जाने से पहले, भगवद गीता क्या है, भगवद गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भगवद गीता किस समय किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता का ज्ञान दिया था, उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करके फिर हम आज का जो अध्याय चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग उसका वर्णन करेंगे। ये भगवद गीता एक प्रकार से वी कैन कॉल इट एज अ क्लासिक कॉन्वर्सेशन जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में अब से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहाँ पर आमने सामने एक ही परिवार के दो भाई, पांडु का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज सात अक्षौहिणी सेना लेकर खड़े हैं और सामने धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना लेकर खड़े हैं। यहाँ ये आलिंगन करने के लिए नहीं आए, ये युद्ध भूमि है। कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, आज मतलब ये 5000 साल पहले जो आज ये घटना घटी, वहाँ पर दोनों भाई आज एक दूसरे की जान लेने के लिए खड़े हैं। उनके बीच में युद्ध होने वाला है जिसको कहा जाता है फ्रेट्रीसाइडल वॉर। ये जो युद्ध अब से 5000 साल पहले हुआ, ये दर्शाता है धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के बीच में युद्ध। अधार्मिक शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन, जिन्होंने धोखे से युधिष्ठिर महाराज का राज्य इंद्रप्रस्थ और साथ ही साथ उनकी पत्नी द्रौपदी के संग बेइज्जती और बहुत दुर्व्यवहार करा था पांडवों के संग, और अपने हक को वापस मांगने के लिए जो युधिष्ठिर महाराज ने 13 साल के वनवास के बाद युधिष्ठिर महाराज को जो अब इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस मिलना था, दुर्योधन देने से मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो अब युधिष्ठिर महाराज के पास कोई और चारा या कोई और रास्ता नहीं रह जाता। तो युधिष्ठिर महाराज अपने 4 भाइयों, युधिष्ठिर महाराज के साथ तो 5 हुए, अपने भाइयों के संग 7 अक्षौहिणी सेना लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब कुछ ही देर पर युद्ध शुरू होने वाला था, वहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और उस जगह उस समय उस अवस्था में भगवद्गीता का वर्णन हुआ। तो जैसे मैंने कहा, ये जो युद्ध था ये एक आसुरिक और देव शक्तियों के बीच में युद्ध था। ये 5000 साल पहले हुआ युद्ध था, युद्ध उस समय समाप्त भी हुआ, पर 5000 साल के बाद आज भी ये युद्ध नियंत्रण चलता आ रहा है। युद्ध चलता आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये युद्ध चलता आ रहा है हर व्यक्ति के मन में, कहिए हृदय में, जहाँ पे आसुरिक और देव शक्ति दोनों ही विराजमान है। आप में से कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपके अंदर, आपके मन के अंदर कोई भी इच्छा जागृत होती है तो उसके साथ साथ 2 आवाज़ें आती हैं। एक कहती है कि हाँ करो, आपको जीवन में आनंद मिलेगा, और दूसरी ध्वनि जो आपको सुनाई देती है वो कहती है नहीं, अगर नशा शराब से आपको आनंद प्राप्त होगा तो आप भूल गए हो कि उससे कितना नुकसान भी होता है। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की 2 ध्वनि आसुरिक और देवगुण की प्रवृत्ति समान रहती हैं, जो व्यक्ति को मार्गदर्शन करने के लिए या उसको उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए उसको उकसाती रहती हैं अलग अलग कर्म करने के लिए। तो 5000 साल पहले बोला गया भगवद्गीता का ज्ञान आज भी हर व्यक्ति हर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद्गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर छुपा जो देव शक्ति है, जो देव गुण है, उसको प्रबल करता है और हमें हमारे जीवन में धर्म का पालन या ये कहिए हमारे जीवन में वो रास्ता चुनने में मदद करता है जिससे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, अपना जीवन आनंद से भर सके और साथ ही साथ समाज के लोगों का सेवा और कल्याण कर सके। तो इसलिए भगवद्गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए। केवल इतना ही नहीं, उदाहरण के रूप में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने का प्रयत्न करूँगा। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसको किसी और डेस्टिनेशन पे जाना होता है, चाहे वो अपनी गाड़ी चलाए या टैक्सी में बैठे, ज़्यादातर व्यक्ति अपना स्मार्टफोन निकालता है, गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालता है। गूगल मैप डेस्टिनेशन डालते ही उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता, कम समय में पहुँचने वाला रास्ता दिखाता है। साथ ही साथ उतना ही नहीं, अगर रास्ते में कभी ट्रैफिक जैम हो तो आपको वहाँ पर फिर गूगल मैप दूसरा रास्ता दिखाता है, नेविगेट करता है कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। उसी प्रकार भगवद्गीता का ज्ञान हमारा इस जीवन के सफ़र में निरंतर मार्गदर्शन करता है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाई या विपदा आती है, कोई ऐसा है जिसके जीवन में आज तक विपदा नहीं आई है, या कोई ऐसा है जिसके जीवन में आगे कभी विपदा या कठिनाई नहीं आने वाली है? ये उसी प्रकार है ट्रैफिक कंजेशन के समान, जब गूगल मैप आपको नेविगेट करता है, उसी प्रकार भगवद्गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को ना खोएं, हम अपनी डेस्टिनेशन को ना भूलें और उसमें हमारा मन एकत्रित रहे, उसमें हमारा भगवद्गीता का ज्ञान मदद करता है। केवल इतना ही नहीं, एक और चीज़ है जो भगवद्गीता की स्पेशलिटी है, जो गूगल मैप भी नहीं देता आपको, यहाँ तक कि वो भगवद्गीता का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। वो कौन सा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है? वो है आपको डेस्टिनेशन समझाना। गूगल मैप में आपको जहाँ पहुँचना होता है तो डेस्टिनेशन लिखनी होती है, पर भगवद्गीता का जो अध्ययन व्यक्ति निरंतर करता है, जो श्रवण करता है ध्यानपूर्वक, तो भगवद्गीता उसको समझाता है या समझाती है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युम वा अमृतम गमया। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इस भौतिक दुनिया में, जो एक प्रकार से मृत लोगों की नगरी है, जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, केवल व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य इस भौतिक दुनिया में भ्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। इस भौतिक दुनिया के परे भी एक आध्यात्मिक दुनिया है, जहाँ अमृतम, जिस दुनिया को एक बार प्राप्त करने से व्यक्ति को ना ही कभी जन्म, न जरा, न मृत्यु, न व्याधि प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होती हैं। उस प्रकार भगवद्गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उसको कैसे सुलझाया जा सकता है उसका मार्गदर्शन, और हमारी गति, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में भगवद्गीता का ज्ञान बताता है। इसीलिए अगर आप शिला प्रभुपाद की भगवद्गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके सेकेंड लास्ट पेज के अंदर शिला प्रभुपाद एक बहुत खूबसूरत श्लोक कोट करते हैं गीता महात्मा से, और कहते हैं, गीता सुगीत कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरा या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्विनिस्त्रता। उसका अर्थ क्या है? ये गीता महात्म्या का चौथा श्लोक है, जिसमें कहा गया है ये जो भगवद्गीता का ज्ञान है, ये भगवद्गीता का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है। इस ज्ञान का अध्ययन या श्रवण कोई व्यक्ति ध्यान से करता है, उसे और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तर है, कोई और शास्त्र का या किसी और ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भगवद्गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय हैं, और इन 700 श्लोक के अंदर 5 प्रमुख विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया है। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, काल, प्रकृति, 5वां कर्म, इन 5 विषय वस्तु पर प्रबलता से जोर दिया गया है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, हमारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का जवाब इन 5 विषय वस्तु को ज्ञान होते ही सारे सवालों का जवाब समाप्त हो जाए। जैसे मैं कौन हूँ, जन्म क्या है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद क्या दूसरा जीवन है, ईश्वर कौन है, भगवान एक हैं अनेक हैं, अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है, भगवान ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए, भगवान ने हमें इस भौतिक दुनिया में क्यों भेजा, इत्यादि प्रकार के प्रश्न हर व्यक्ति के मन में होते हैं। और सबसे प्रमुख प्रश्न जो आज की तारीख में लोगों के मन में होता है, मुझ जैसे अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है, इन अदर वर्ड्स व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। इन सब का जवाब भगवद्गीता और इसके साथ साथ अनेक अनेक प्रश्नों का जवाब भगवद्गीता में मिलता है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवद्गीता का ज्ञान कोई सांप्रदायिक, जातिवाद या केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है। कृपा करके इसको जरूर समझिएगा। भगवद्गीता का ज्ञान, या जब भगवद्गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, वो 5000 साल पहले की बात है। उस समय ना ही तो कोई अब्राहमिक रिलीजन था, ना ही जो आज के मॉडर्न डे रिलीजन हैं, कोई भी धर्म उस समय नहीं था। उस समय केवल एक ही धर्म था, जिसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के चौथे अध्याय में करेंगे। उस समय उसके बारे में विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब चौथे चैप्टर के बारे में वर्णन करेंगे। बस सारांश में, वर्ण आश्रम धर्म का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हुए आपके 4 प्रकार के ऑक्यूपेशंस। और पर्सनल लाइफ जीने के लिए जो आश्रम बताया गया है या स्पिरिचुअल ऑर्डर बताया गया है, वो है आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बालक या बालिका का जन्म किसी कार्डियोलॉजिस्ट के घर में होता है, इसका मतलब वो नहीं वो बड़े होकर सर्जन बन जाएगा या बन जाएगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, किसी बालक का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो ब्राह्मण कहलाता है। व्यक्ति ब्राह्मण कुल ब्राह्मण लक्षण का है या क्षत्रिय या उसको ब्रह्मचारी जीवन या संन्यास जीवन व्यतीत करना है, वो निर्भर करते हैं व्यक्ति के खुद के गुण और कर्म के ऊपर। वो तो कलयुग दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम आज शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम अपनी नासमझ होने के कारण, अज्ञानता के कारण हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो क्षत्रिय कहलाएगा। भगवान इस चीज़ को नहीं कहते। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, मैंने इस समाज को व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार उसका विभाजन किया है। और इसमें आखिरी भाग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों इस प्रकार से भगवान ने विभाजन करा है, आज का समाज श्रद्धा या फेथ के ऊपर उसका विभाजन है। कोई किसी की श्रद्धा इस्लाम धर्म के ऊपर है तो कहता है वो मुसलमान है, किसी की श्रद्धा जीसस के ऊपर है तो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, और किसी की श्रद्धा हिंदू देवी देवता के ऊपर है तो अपने आप को हिंदू कहता है। हाँ या ना, आज का समाज इसी प्रकार श्रद्धा के ऊपर बटा हुआ है। पर जो ये वर्णाश्रम धर्म है, व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय गुण हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था, किसी व्यक्ति के अंदर बिजनेस के गुण हैं, बिजनेस करने की इच्छा है, तो वैश्य वर्ण का कहलाता था। मतलब क्या है, जो भी आप कर्म करें उसमें कैसे आनंदित रह सकें, इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया था। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है, आप में से कितने लोग हैं जो आप आज ऑक्यूपेशन करते हैं उसमें आप बहुत खुश हैं, या कितने लोग हैं जो आज भी सोच रहे हैं कहाँ फंस गया मैं, शायद मैंने इंजीनियरिंग ना करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया होता तो अच्छा होता। अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो कारण क्या है, हमारा गुण क्या है, हमारा वर्ण क्या है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम पे धन संपत्ति है पर फिर भी वो सुख शांति नहीं है। हमें प्रमोशन मिलता है, विदेश की यात्रा मिलती है ऑफिस की तरफ से, बट काम करने में आज भी मन नहीं लगता। व्यक्ति सोचता रहता है क्यों ना मैं दूसरी ऑक्यूपेशन करूं, उसका कारण यही है। इस प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म हुआ करता था पहले, ताकि इत्यादि धर्म जो आज हैं, तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया तो सिर्फ एक वर्णाश्रम धर्म था, इसलिए कोई सांप्रदायिक जातिवाद का ज्ञान नहीं है। और अंत में इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के बारे में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या, हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें भगवद्गीता का ज्ञान दे रहा हूँ ये सभी ज्ञानों का राजा है। राजगुह्यम, ये सबसे सीक्रेट नॉलेज है। गुह्यतमम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये सबसे शुद्ध ज्ञान है। इदम उत्तमम, इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष स्वगमम धर्म्यम, इस ज्ञान का पालन करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो सकता है, होता है, और भगवान का दर्शन होता है। और अंत में सुसुखम, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख की खोज नहीं कर रहा है। और भगवान कहते हैं अगर इस ज्ञान का अध्ययन कोई व्यक्ति करता है, निश्चित ही रूप से उसको अपने जीवन में सुख सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका कभी नाश नहीं होता। ये है भगवद्गीता, हम सभी के जीवन में एक खुशी लाने वाला। आज हर प्रकार की सेल्फ हेल्प बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, पर भगवद्गीता से सर्वश्रेष्ठ सेल्फ हेल्प बुक कोई भी नहीं है। इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करूंगा इस भगवद्गीता सार प्रोग्राम में। अब हम भगवद्गीता का जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, यह इसका दूसरा नाम सैन्य दर्शन है, तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं किससे, संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेत युयुत्सव मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजया। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब पहुँचे तो उन्होंने क्या किया। बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवद्गीता जो हमने शुरुआत में बताया इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, वो भगवद्गीता ना ही कृष्णा ये अर्जुन के वचनों से शुरू नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के वचनों से शुरू हुई है। क्यों, धृतराष्ट्र शब्द का मतलब क्या है, धृत मतलब दृढ़ या ढीट, राष्ट्र मतलब राज्य या गद्दी। धृतराष्ट्र वो है जो राज्य से बहुत आसक्ति करता है या आसक्ति है, जो राजा बना रहना चाहता है किसी भी कीमत पर। ये वो उस प्रकार है, उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण दिया जाए, जैसे विदेश में रहने वाला एक माफिया डॉन जो अपने चेलों के द्वारा दूसरी जगह पे आतंक फैलाता है, उसी प्रकार ये धृतराष्ट्र एक माफिया डॉन के समान है जो सबके सामने तो बड़ा ही अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए पर पीठ पीछे वो सबका सर्वनाश करना चाहता है। और यहाँ उसके चेले हैं उसके खुद के पुत्र शकुनी, कर्ण इत्यादि लोग, जिनको वो मोहरा बनाकर अपने जुए का गेम खेलने में लगा हुआ है। इसलिए इस भगवद्गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाचा से हुई, क्योंकि ये महाभारत कहानी का सबसे प्रमुख किरदार है जिसके कारण 5000 साल पहले ये महायुद्ध हुआ। और अब आगे संजय धृतराष्ट्र के पूछे जाने पर श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक अब संजय दुर्योधन के बारे में बताते हैं। तो दुर्योधन ने क्या किया युद्ध भूमि पर पहुंचकर? दुर्योधन के बारे में संजय कहते हैं, दुर्योधन घबराया हुआ है, वो डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है अपने सैन्य, जो उसका सैन्य है उसका बल बढ़ाने के लिए। अरे सैन्य बल बढ़ाने के लिए? दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, बेचारे युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेना, एक नज़रिए से आधी सेना। और यहाँ दुर्योधन के पास ऐसे महान योद्धा हैं, उदाहरण के रूप में भीष्म पितामह, जिनको कोई मार ही नहीं सकता, द्रोणाचार्य जिनको कोई हरा ही नहीं सकता, वैसे कृपाचार्य जिनको कोई हरा नहीं सकता, फिर साथ में शैल्या, कर्ण और दुर्योधन, क्या कुछ कम है? इतने महान महान योद्धा हैं। उदाहरण के रूप में सोचिए, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और सामने जो क्रिकेट टीम है उसमें ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप आउट ही नहीं कर सकते, तो टेस्ट मैच का मतलब ही क्या है? तो इस प्रकार का ये गेम होने वाला है, मतलब युद्ध होने वाला है। दुर्योधन के पास इतना सैन्य बल, इतने सारे महान योद्धा हैं, फिर भी दुर्योधन घबरा रहा है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो दुर्योधन के 13 साल, जब 13 साल के लिए पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन के 13 साल का भी वर्णन आता है, एक रात शांति से नहीं सोया। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कहीं चोरी करता है या जो चोर होता है उसके मन में हमेशा भय रहता है, पकड़ा गया तो बहुत डंडे पड़ेंगे। उसी प्रकार ये दुर्योधन, क्योंकि इसने युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया है चोरी से, धोखे से, इसलिए इसके मन में भय बना हुआ है। तो बहुत प्रमुख शिक्षा सीखने को मिलती है इससे। हमारे पास भौतिक सुविधा, कितना ही धन संपत्ति या पोजेशंस क्यों ना हो, पर ये सब व्यक्ति के मन में छुपा हुआ भय नहीं निकाल सकते। जब जब व्यक्ति गलत कर्म करता है, कार्य करता है, वो चिंताग्रस्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, हर कोई व्यक्ति चिता पर एक बार बैठता है पर चिंता की चिता पर बार बार जलता रहता है। युधिष्ठिर महाराज नहीं, दुर्योधन। उस प्रकार एक श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र के वचन, उसके बाद दुर्योधन की अवस्था का वर्णन करते हैं। अब आगे चलते हैं 13वें श्लोक में। अब 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक संजय वर्णन करते हैं पांडवों की स्थिति। एक तरीके से संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे बूढ़े, तुम वैसे ही अंधे हो चुके हो राजन, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे पुत्रों की युद्ध जीतने की कोई भी आशंका नहीं है। और बहुत खूबसूरत श्लोक आता है 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडरम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख, अर्जुन ने अपना शंख और भीमसेन ने अपना शंख, और अगले श्लोक में 16वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव इत्यादि जो उनके संग वहाँ महान योद्धा थे, सब ने अपना शंख बजाया। इससे पहले श्लोकों में संजय कौरवों के सेना में उपस्थित महान योद्धाओं के द्वारा बजाए हुए शंख का भी वर्णन करते हैं, पर पांडवों को उस शंख की ध्वनि से कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पे संजय बताते हैं, जैसे ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इत्यादि ने अपना शंख बजाया तो कौरवों के कैंप में हलचल मच गई। जो लोग रथ पर खड़े थे और उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया वो वहीं पर कांपने लगे। जो हाथी पे बैठे थे, जो घोड़े पे बैठे थे, बेहोश होकर गिर गए। और जो सैन्य बल था, जो जमीन पे खड़ा था, उनको सुबह सुबह चक्कर आ गए। तो इस प्रकार इस श्लोक संख्या में यहाँ पे पांडवों के जीतने के अलग अलग चिन्ह का वर्णन करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, पांडवों को तुम हरा ही नहीं सकते। अर्जुन के रथ पे जो फ्लैग है उस पे हनुमान जी विराजमान है। और केवल इतना ही नहीं, अर्जुन के सारथी कौन है उसको तो कभी मत भूलिएगा। इस प्रकार 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक संजय पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। और अब आइए 21वें श्लोक में। अब बहुत ही अद्भुत घटना घटती है महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले। जब दोनों पार्टीज़ ने शंख बजा दिया, इसका मतलब क्या है? क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, राइट और नो? मतलब युद्ध शुरू होने वाला है। पर अब युद्ध शुरू होने से पहले अब एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग श्लोक आता है, श्लोक संख्या 21 और 22, अध्याय 1। अर्जुन कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्या मे अच्युता यावदेतान निरक्षे अहम योधु कामान अवस्थितान। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाएं। मैं देखना चाहता हूँ हमसे युद्ध लड़ने की इच्छा लेकर कौन कौन यहाँ कौरवों का साथ देने के लिए आए हैं। इस चीज़ का वर्णन श्लोक संख्या 21 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक इस प्रकार संजय जो अर्जुन ने ये वचन बोले हैं उसका उल्लेख करते हैं। बट यहाँ पर बहुत प्रमुख शिक्षा या एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इन श्लोक से आता है। पहली चीज़, भगवान श्री कृष्ण पहली बार भगवद्गीता में अब इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। श्री कृष्ण जो भगवान है, जिसको अर्जुन खुद स्वयं आगे जाके बोलेगा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, जिनको शास्त्रों में कहा गया है ओम पूर्णम अधा पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आधाया पूर्णम एवा वशिष्यते इत्यादि इत्यादि। शास्त्रों में अलग अलग श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है कि अब परम ईश्वर हैं। वो परम ईश्वर, वो परम भगवान सच्चिदानंद, वो भगवान का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है? किसी मूवी में फिल्म स्टार का हीरो का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? बड़े धूम धमाके से। और हमारे इस पूरे दुनिया का जो राजा है, जो हीरो है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है? एक ड्राइवर के रूप में। बहुत ही अनोखी चीज़ है। लोग सोचते हैं भगवान का मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्क, जो इच्छा होती है लोगों को निर्देश देते हैं, करवाते हैं। वही परमेश्वर भगवान आज अपने ही सेवक, मतलब अपने ही भक्त का दास के रूप में भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन होता है। सोचने वाली बात है। इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सला कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सेवा के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे आज अर्जुन की प्रसन्नता के लिए उसका सारथी बनने को तैयार हो गए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों का जो संबंध है बड़ा ही गुह्यम है, बड़ा ही रहस्यमय है। उसका ज्ञान तो हम भगवद्गीता के आगे आने वाले अध्याय में वर्णन करेंगे, बट सारांश में बताने के लिए हमारे परमेश्वर भगवान का इंट्रोडक्शन इस प्रकार भगवद्गीता के पहले अध्याय में होता है। तो इसका उल्लेख 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक आता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेना के बीच में रख देते हैं। और अब आगे वर्णन आता है 28वें श्लोक से। 28वें से 30वें श्लोक तक अब एक और अनोखी घटना घटती है। क्या अनोखी घटना घटती है? अर्जुन बोलते हैं, प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। प्रभु मेरे परम पिता भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे अनेक भाई मित्र खड़े हैं, प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और इस समय अर्जुन का मन इतना विचलित हो जाता है, वो इतने घबरा जाते हैं, उनको क्या सही है क्या गलत का एहसास नहीं होता। सोचने वाली बात है। अर्जुन इस समय अपने भौतिक दृष्टिकोण से उस सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, जिस कारणवश आज वो इमोशनल हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। मतलब क्या है? जब जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का कमी होती है या उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, तब तक व्यक्ति इस दुनिया को भौतिक दृष्टिकोण से देखता है। ये दृष्टिकोण कहाँ से पैदा होता है? ज्ञान से। भौतिक दृष्टिकोण मतलब भौतिक ज्ञान से। तब तक व्यक्ति इस प्रकार जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसमें निर्णय नहीं ले पाता। आप में से कितने लोग हैं जिनको इस चीज़ का एहसास है कि डिसीजंस लेना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे डिसीजंस में भी हम हाँ ना हाँ या ना करते रहते हैं। तो उस चीज़ का उल्लेख आता है 28 से 30वें श्लोक तक। और अब हम आखिरी जो इस अध्याय एक का जो सेक्शन है, जो श्लोक संख्या 31 से शुरू होता है, जिसको कहा जाता है इस भगवद्गीता या महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे अब 31वें श्लोक से आगे अर्जुन चार प्रमुख कारण देते हैं जो वो बताते हैं कृष्ण को कि वो क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते। पहला कारण बोलते हैं कंपैशन, कृपा। हे प्रभु, मैं अपने भाईजनों के संग युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? केवल वही नहीं, मेरे हित के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई राजा बने, उनके हित के लिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होगी, तो मैं ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? ये वही अर्जुन है जिसने 13 साल इस क्षण का इंतज़ार किया था। उस 13 साल की तैयारी इंतज़ार के बाद आज वो आके कहता मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्या अर्जुन को पता नहीं था? क्या अर्जुन के लिए सरप्राइज टेस्ट था? सब पता था, फिर भी भौतिक दृष्टिकोण होने के कारण अब वो विचलित हो चुका है। पहला कारण कंपैशन। दूसरा कारण अर्जुन देते हैं इन्जॉयमेंट। हे प्रभु, इस युद्ध में सब जो लोग आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, प्रिय हैं, मित्र हैं, अगर सबकी मृत्यु हो गई तो सुख तो बांटने से बढ़ता है। हमारा अकेले राजा बनने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? हम दूसरों के संग सुख बांट नहीं पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा कारण देते हैं। तीसरा कारण देते हैं पाप कर्म का, फियर ऑफ सिंस। अर्जुन कहते हैं प्रभु, मुझे यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए मुझे अपने भीष्म पितामह को हराना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा, द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं इत्यादियों का वध करना पड़ेगा, तो उससे मुझे पाप चढ़ेगा। मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा, तो पाप तो निश्चित रूप से चढ़ेगा, तो मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता। और चौथा कारण बताते हैं ट्रेडिशंस, फैमिली ट्रेडिशंस, जो हमारे परिवार के संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु, अगर कोई क्षत्रिय बचेगा ही नहीं, क्योंकि इस युद्ध में पूरे इस दुनिया के सारे क्षत्रिय इकट्ठे हो चुके हैं और इस युद्ध में कोई मुश्किल से बचने वाले हैं, ज़्यादातर तो सब लोग मारे जाएंगे, तो पूरे समाज में एक प्रकार का हिंसा फैल जाएगा, क्योंकि कोई राजा कोई क्षत्रिय रक्षा करने लायक बचेगा नहीं। जो चोर उचक्खे हैं, जो अधर्मी हैं, वो राज्य का अपने हाथ में बल लेकर लोगों में जितने भी हमारे संस्कार हैं, जो भी वैदिक संस्कृति है, उसका नाश हो जाएगा। इस चार कारण बता के अर्जुन अंत में 46वें श्लोक में आते आते संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन ने निर्णय लिया है कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। हम अध्याय एक के समापन पर आते हैं, बट एक प्रमुख बात, जैसे अर्जुन के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई है जहां उसका सामना करते हुए घबरा रहे हैं, उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। ये परिस्थिति भगवद्गीता के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है, हाँ या ना? और आगे भगवद्गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में विजय होते हैं। मतलब क्या है? इस भगवद्गीता के ज्ञान को सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद, अर्जुन के मन में जितना भी संशय होता है समाप्त हो जाता है। तो इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। जीवन में, अर्जुन के जीवन में परिस्थितियाँ नहीं बदली, पर उस परिस्थिति में उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना है उसमें बदलाव आया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 5000 साल के बाद भी क्या हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती? ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती जो हमें इतना विचलित कर देती हूँ कि हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है? तो ये भगवद गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है ऐसी परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई कहें, अरे प्रभु जी, मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। मानता हूँ आपके जीवन में आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्या भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी? भविष्य में तो आ सकती है, इसलिए इस भगवद्गीता का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति का मन शांत है, अगर तब वो अध्ययन करेगा तो उसको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसलिए जिनके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, कृपा करके इसका अध्ययन करिए, इसका श्रवण करिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थितियों का आप सामना सही रूप से कर सकें और आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपको सही रूप से पता रहे। इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपके लिए, आपको सोचने के लिए एक या दो प्रश्न आपको बताकर जाते हैं। पहला प्रश्न, क्या लगता है आपको अर्जुन का जो निर्णय है युद्ध ना लड़ने का सही है या गलत? और दूसरा प्रश्न, अगर आप अर्जुन की स्थिति में होते और आपके सामने ऐसी परिस्थिति होती तो आप क्या करते या क्या करेंगे, युद्ध लड़ते या नहीं लड़ते? और यदि नहीं लड़ते तो अर्जुन ने आगे युद्ध कैसे लड़ा, उसका उल्लेख तो हम दूसरे अध्याय से करेंगे जो हम कल पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांख्य योग। तो इन दो प्रश्नों के साथ हम आज का अध्याय और आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।